मित्रों, आपने पिछले दिन देखा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा बच्चा 10 साल का एक बहुत बड़ा तरबूज खा रहा था और उसकी किसी ने वीडियो बनाई और वो वीडियो हो गई वायरल। तो लोग ये जानना चाहते थे क्या बच्चे ने पूरा तरबूज यानी खाल, बीज और माल सब कुछ खा लिया या क्या हुआ। तो इस तरबूज से याद आया कि तरबूज के तो कई प्रकार आते हैं और एक अद्भुत तरबूज के बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं अंशुमान शुक्ल जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन आज उनसे तरबूजों के बारे में पूछते हैं। तो नमस्कार अंशुमान जी।
जी नमस्कार।
आप बता रहे थे कि एक अद्भुत प्रकार का तरबूज होता है, तो इसके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ जानकारी दीजिए ना।
देखिए, ये तरबूज इलाहाबाद में, जैसे आप इंटर करते हैं लखनऊ के रास्ते, जब आप इलाहाबाद जाते हैं तो इलाहाबाद के इस पार एक इलाका है फाफामऊ।
फाफामऊ
वो इलाका है, हाँ, फाफामऊ दरअसल उस जगह का नाम है जहां पर ये तरबूज पाया जाता है। और इस तरबूज की एक खासियत ये है कि एक ऊंट पर दो तरबूज आते हैं, इससे इनके आकार का अंदाज लगाया जा सकता है। और तरबूज के वजन की अगर बात करें तो 70 से 75 किलो तक इनका वजन अमूमन देखा गया है। और ये माना जाता है कि एक तरबूज ले आइए और पूरे परिवार के साथ शानदार तरबूज का आप नाश्ता करिए।
70 किलो का तरबूज?
जी, 70 से 75 किलो का तरबूज बिल्कुल चलन में है। इलाहाबाद के रहने वालों की आंखें इन तरबूजों को देखने के लिए अभ्यस्त हैं। और इस तरबूज की एक बड़ी बड़ा रोचक इतिहास भी है। अगर आप धार्मिक महत्व को लेकर इस पे चलें तो इस तरबूज को, चूंकि नदी के किनारे पर इनको बोया जाता है, तो नदी के किनारे पर जो बलुई मिट्टी है, उस बलुई मिट्टी में बोने की वजह से इसको निषाद लोग जो हैं, जो नाव चलाने वाले हैं और जिनका जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत नदी के आसपास ही होता है, वो इसको बोते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले और इलाहाबाद में भरद्वाज आश्रम तक वो पहुंचे तो उनको रास्ते में ये फाफामऊ का इलाका भी पड़ा। अच्छा। और इस फाफामऊ के इलाके में इस तरबूज का तो उस समय जिक्र नहीं था क्योंकि वो तरबूज का मौसम नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है, जब भगवान राम प्रयाग तक गए। लेकिन वो निषाद राज जरूर थे जिन्होंने उनको इलाहाबाद से गंगा पार कराई और गंगा पार कराने के बाद उनको चित्रकूट की तरफ, जो विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला है, उसकी तरफ उन्होंने छोड़ा।
अच्छा।
तो ये तरबूज, अच्छा, बड़ी बड़ा आकार होने की वजह से इस तरबूज के साथ तमाम तरीके की अविसंगतियां भी जुड़ गई हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था, एक परिवार में 30-35 लोग हुआ करते थे तो एक तरबूज बड़े आराम से लोग खा लिया करते थे, लेकिन अब इतना विशाल काय तरबूज आप फ्लैट में या फ्रिज में रखेंगे कैसे। तो इसकी वजह से एक समस्या पैदा हुई और इस समस्या पे अब तरबूज की जगह उन्होंने तरबूजनी पैदा करनी शुरू की जो 10 से 12 किलो की होती है।
अच्छा।
और इसके साथ ही वहां पर जो चाइनीज तरबूज आए, उन तरबूजों ने आके इलाहाबाद का ये जो खांटी तरबूज है, इस तरबूज को काफी ज्यादा इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाला। और इलाहाबाद में अगर आप देखिए इस तरबूज को, तो इस तरबूज को की मिठास कितनी है, इसके लिए इसको एक अलग नाम दिया गया, माधुरी।
अच्छा।
इसका दरअसल नाम माधुरी है और इसका जो छिलका है ऊपर का वो बिल्कुल काही कलर का होता है, जैसे काई का रंग होता है उस कलर का होता है, उसमें हल्का सा कालापन मिला हुआ ऊपर का छिलका होता है जो बहुत मोटा होता है। और अगर आप मुगल कालीन इतिहास पर जाइए तो मुगल कालीन इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो बादशाह सलामत थे अकबर, उनको ये तरबूज बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि अकबर का जुड़ाव इलाहाबाद से था। और इलाहाबाद पर अगर बात करें, अकबर को लेकर बात करें, तरबूज को लेकर बात करें, गंगा को लेकर बात करें, तो गंगा जल की बात भी होनी जरूरी है।
अच्छा।
और ये कहा जाता था कि 44 दिन गंगा जल को इलाहाबाद से आगरे जाने में लगता था और मुगल बादशाह लगातार रोज 5 घड़े गंगा जल पीते थे। तो इससे आप अंदाज लगा सकती हैं कि उस समय जो इनका एक बकायदा कोर था, एक अलग इनकी सैन्य टुकड़ी थी जो पानी को और गंगा जल को लेके इलाहाबाद से जाया करती थी आगरे और उसके बाद दिल्ली, और इसी पानी की टुकड़ी की जिम्मेदारी यहाँ फाफामऊ के तरबूज को भी लेके मुगलिया सल्तनत तक पहुंचाने की थी।
वाँ वाँ।
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
बहुत ही रोचक कहानी है।
और इस तरबूज के बारे में जहां तक बात की जाए इलाहाबाद की, तो अगर आप इलाहाबाद के लोगों से अब इस तरबूज के बारे में पूछिए तो वो थोड़ा सा संजीदा हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनकी कहीं वो जो खांटी एक पहचान है इलाहाबाद के तरबूज की, हालांकि पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है लेकिन लुप्त प्राय होने की कगार पर ये तरबूज जरूर पहुंच गया है इलाहाबाद में। बहुत थोड़ी सी जगह है जहां ये तरबूज उगाया जाता है और इसको ले जाने वाले भी या तो अभी जो एकाध दो चार संयुक्त परिवार बचे हुए हैं उनके लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ले जाके खाया जाता है। और इसको खाने के पीछे अब दो उद्देश्य हैं, एक तो तरबूज ले जाएंगे, फल सस्ता है, दूसरा सस्ते फल में गरीबी बड़े आराम से ढकी जा सकती है, सस्ते फल में पेट बड़े आराम से भरा जा सकता है। इस वजह से इस फल को एक खास तबका आप पसंद कर रहा है, हालांकि जो इस फाफामऊ के तरबूज का स्वाद है वो लासानी है, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप तमाम तरबूजों के बीच में उसको रखेंगे तो उसको आप बेसाख्ता कह सकते हैं कि ये हासिले महफिल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरबूज की जो का आकार है वो आकार अब इसको मतलब इसकी अस्तित्व पर संकट पैदा कर रहा है। वर्तमान जो स्थिति है, जो छोटे तरबूज फाफामऊ के अभी जो विकसित किए गए हैं चाइनीज मोटे छिलके के तरबूजों के साथ, उन तरबूजों का छिलका पतला है, उस तरबूजों के छिलके के पतले होने की वजह से वो तरबूज बहुत ज्यादा दिनों तक आप रख नहीं सकते। इसके अलावा उन तरबूजों के फटने की गुंजाइश ज्यादा होती है, जबकि ये जो फाफामऊ के बड़े तरबूज हैं इनको ले आइए और ले आके आप बालू की जमीन पर ऐसे पटक दीजिए तो ऐसे ही बिल्कुल मस्त बड़े गुब्बारे की तरीके से ये थोड़ी सी अपनी टोन फुलाते और पिचकाते हैं और उसके बाद फिर से ये एडजस्ट हो जाते हैं, इनकी सेहत पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
वाह वाह, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। आपने खाया है फाफामऊ का कलिंगर?
बिल्कुल, मैं चूंकि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और इलाहाबाद का रहने की वजह से मेरे तो ये संस्कारों में रचा बसा रहा है तरबूज।
ठीक है, कहते हैं तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग पकड़ता है, तो आशा करते हैं कि ऐसे और भी तरबूजे उगाए जाएं और हम भी उनको देख पाएं और खा पाएं।
बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो खांटी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धर्म से, हमारे समाज से, हमारी रवायतों से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर हम उनको लेकर नहीं चलेंगे तो इससे सिर्फ एक घाटा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे पिछले संस्कारों में से बहुत सी ऐसी चीजों की रिक्तता को जान ही नहीं पाएंगी जिनको लेकर हम और आप अपने पूरे जीवन को सजा पाए, संवार पाए।
बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी है आपने अंशुमन भाई,
बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।